एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने जा रहे हैं। नाम है स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस।
हाँ, और इसके लेखक हैं डैनियल गिलबर्ट।
और ये किताब ना उस सवाल से जूझती है जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं होता है कि भाई हम सब खुशी तो चाहते हैं,
बिल्कुल चाहते हैं,
पर अक्सर ये अंदाजा लगाने में क्यों चूक जाते हैं कि हमें असल में खुशी मिलेगी किससे, मतलब क्या चीज हमें सच में खुश करेगी।
सही बात है। हम सोचते हैं कि अच्छा, अगर वो नौकरी मिल जाए या वो घर खरीद लें या फलां जगह घूमने चले जाएं तो बस जिंदगी सेट है, खुशी खुश रहेंगे।
हाँ, और फिर जब वो हो जाता है तो या तो वो खुशी उतनी नहीं होती जितनी सोची थी, या फिर बहुत जल्दी हवा हो जाती है ना?
बिल्कुल। और ये सिर्फ छोटी मोटी इच्छाओं की बात नहीं है, ये तो हमारे जीवन के बड़े बड़े फैसलों से जुड़ा है। करियर चुनना हो, रिश्ते हो, कहाँ रहना है।
और आज के जमाने में तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है मुझे लगता है, क्योंकि देखो ना, विकल्प इतने सारे हैं
हाँ, हर चीज के लिए।
और एक प्रेशर भी रहता है कि सही चुनाव करना है जिससे खुशी गारंटीड हो। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो इसी इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करेगी।
हाँ, कि हमारा दिमाग हमें भविष्य की खुशी के बारे में कैसे कैसे भरमाता है, या कहें कि धोखा देता है।
और शायद ये जानना कि ऐसा क्यों होता है, ये थोड़ा सुकून देने वाला भी हो सकता है, निराशाजनक नहीं।
बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात करते हैं। डैनियल गिलबर्ट ये कोई आम सेल्फ हेल्प गुरु टाइप नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। डैनियल गिलबर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, और वो भी कोई ऐसे वैसे प्रोफेसर नहीं, बल्कि दुनिया के जो लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं ना,
अच्छा,
किस चीज़ पर, खुशी पर, हम फैसले कैसे लेते हैं, हमारा दिमाग भविष्य का अंदाज़ा कैसे लगाता है, इन सब विषयों पर। उनका जो खास रिसर्च एरिया है उसे कहते हैं अफेक्टिव फोरकास्टिंग।
अफेक्टिव फोरकास्टिंग, थोड़ा समझाइए इसे।
हाँ, अफेक्टिव मतलब भावनाओं से जुड़ा हुआ, फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी। तो बेसिकली ये स्टडी करना कि हम इंसान ये अंदाज़ा कैसे लगाते हैं कि भविष्य में हमें कैसा महसूस होगा।
सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा लगता है। मैं सोच सकता हूँ कि कल मुझे कैसा लगेगा।
लगता तो है, पर गिलबर्ट यही तो बताते हैं कि यही इसी अंदाजे में हम सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। उन्होंने मतलब दशकों तक इस पर रिसर्च की है, लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ये समझने के लिए।
तो वो साइंटिस्ट हैं प्रॉपर।
हाँ बिल्कुल, और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस भारी भरकम जटिल रिसर्च को बड़े मज़ेदार तरीके से समझाते हैं। उनकी लिखने की स्टाइल में ह्यूमर है, वो आम जिंदगी के उदाहरण देते हैं।
अच्छा, मतलब बोरिंग नहीं है किताब।
बल्कि वो सबूतों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं कि देखो, हमारा सोचने का सिस्टम ही ऐसा है कि हम खुशी की राह में अक्सर ठोकर खा जाते हैं, ये हमारी बनावट का हिस्सा है।
तो आते हैं किताब के मूल विचार पर। अगर एक लाइन में कहना हो तो क्या है?
एक लाइन में तो शायद ये कि इंसान ये अनुमान लगाने में बहुत खराब है कि भविष्य में उसे क्या चीज खुशी देगी।
हाँ, और ये हमारी कोई पर्सनल फीलिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं या आप ऐसे हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। गिलबर्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग हमें कुछ खास तरीकों से, सिस्टमैटिकली, व्यवस्थित रूप से धोखा देता है।
कैसे, मतलब क्या है वो तरीके?
पहला तो है हमारी कल्पना, हमारी इमेजिनेशन। वो भविष्य की स्थितियों की जब तस्वीर बनाती है ना, तो उसमें कुछ ज़रूरी डिटेल्स छोड़ देती है, या फिर कुछ गलत चीज़ें अपनी तरफ से भर देती है।
अच्छा, जैसे
जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि नई गाड़ी खरीदने से कितनी खुशी मिलेगी। आप शायद खुली सड़क पर ड्राइव करने का सोचेंगे, लोगों की तारीफ सोचेंगे, पर आप ट्रैफिक जैम, पार्किंग की दिक्कत या लोन की ईएमआई जैसी बातें शायद भूल जाएंगे।
हाँ, ये होता है, हम अच्छी अच्छी बातें सोच लेते हैं।
बिल्कुल, इसे वो फिलिंग इन कहते हैं। कल्पना खाली जगह भर देती है, पर अक्सर गलत चीज़ों से। दूसरा बड़ा कारण है प्रेजेंटिज्म।
प्रेजेंटिज्म यानी वर्तमानवाद।
हाँ, इसका मतलब है कि हम जैसा अभी महसूस कर रहे होते हैं ना, हमें लगता है भविष्य में भी वैसा ही महसूस करेंगे। हमारा आज का मूड, हमारी आज की शारीरिक हालत, वो हमारे कल के अनुमानों पर बहुत ज्यादा असर डालती है।
अरे हाँ, जैसे अगर आज मैं बहुत थका हुआ हूँ तो शायद मुझे लगेगा कि अगले हफ्ते पार्टी में जाने में भी मज़ा नहीं आएगा।
एग्जैक्टली, या फिर वो क्लासिक उदाहरण जब हम भूखे पेट शॉपिंग करने जाते हैं।
तो ज़्यादा खरीद लेते हैं।
हाँ, क्योंकि उस वक्त लगता है कि बाद में भी इतनी ही भूख लगेगी। यह है प्रेजेंटिज्म। और तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट भी बहुत दिलचस्प है, वो है हमारा साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम।
मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा प्रणाली।
सुनने में भारी लगता है।
हाँ, पर आइडिया कमाल का है
जी।
ये हमारे दिमाग की एक अंदरूनी क्षमता है जो हमें बुरी घटनाओं से, मुश्किलों से उभरने में मदद करती है। हम चीजों को नए नजरिए से देखने लगते हैं, हालात के हिसाब से ढल जाते हैं।
लेकिन हम इस क्षमता को पहचानते नहीं हैं।
बिल्कुल, हम इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर नौकरी चली गई या ब्रेकअप हो गया तो हम तो बस टूट ही जाएंगे, महीनों दुखी रहेंगे। पर असल में
हम उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी संभल जाते हैं। हमारा ये इम्यून सिस्टम काम करने लगता है, हमें बेहतर महसूस कराता है और हमें पता भी नहीं चलता।
तो ये किताब एक तरह से हमारे दिमाग के उन फीचर्स को, या कहें के बग्स को उजागर करती है जो खुशी के रास्ते में हमें भटकाते हैं।
हाँ, ये कोई हाउ टू गाइड नहीं है, ये वाय यानी क्यों का जवाब देती है कि हम खुशी की तलाश में अक्सर क्यों ठोकर खाते हैं।
ठीक है, तो किताब में वो इन आइडियाज को और गहराई से समझाते हैं। जैसे वो शुरुआत करते हैं प्रोस्पेक्शन से।
हाँ, प्रोस्पेक्शन यानी भविष्य के बारे में सोचने की हमारी क्षमता। गिल्बर्ट कहते हैं कि यही वो चीज है जो हमें बाकी जानवरों से अलग बनाती है।
हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, उसके लिए योजना बना सकते हैं। ये हमारी सुपर पावर एक तरह से।
पर यही सुपर पावर, जैसा हमने कहा, गड़बड़ भी करती है, क्योंकि हम अपने सारे फैसले इसी भविष्य की कल्पना के आधार पर लेते हैं।
और यहीं पर हमारी कल्पना हमें कैसे धोखा देती है, इसके बारे में गिल्बर्ट विस्तार से बताते हैं। वो फिलिंग इन वाली बात कि कल्पना खाली जगह भर देती है।
हाँ, और वो सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं भरती, बल्कि कभी कभी वर्तमान की चीजें उठाकर भविष्य में डाल देती है।
और वो ये भी बताते हैं कि कल्पना उन चीजों पर ध्यान नहीं देती जो भविष्य में नहीं होंगी। मतलब हम सिर्फ आने वाली चीजों पर फोकस करते हैं, उन चीजों पर नहीं जो उस समय मौजूद नहीं होंगी। ये भी एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट है।
फिर वो प्रेजेंटिज्म पर आते हैं, जिसका जिक्र हमने किया कि आज का एहसास कल पर हावी हो जाता है।
हाँ, और ये बहुत पावरफुल चीज है। जब हम गुस्से में होते हैं या डरे हुए होते हैं तो हमें लगता है कि ये भावना हमेशा रहेगी और हम उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है वो इम्पैक्ट बायस।
इम्पैक्ट बायस यानी किसी घटना के भावनात्मक प्रभाव का गलत अंदाजा लगाना।
हाँ, हमें लगता है कि कोई अच्छी चीज होगी तो हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, और कोई बुरी चीज होगी तो हम कभी उभर नहीं पाएंगे।
जैसे लॉटरी जीतना या कोई बड़ी बीमारी होना, हम सोचते हैं इनका असर जिंदगी भर रहेगा।
पर रिसर्च क्या कहती है?
रिसर्च कहती है कि हम गलत हैं। अच्छी और बुरी दोनों तरह की घटनाओं का असर हमारी खुशी के लेवल पर उतना लंबा नहीं टिकता जितना हम सोचते हैं। हम वापस अपने बेसलाइन लेवल के आसपास आ जाते हैं।
और यहीं पर वो साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम काम आता है ना?
हाँ बिल्कुल, ये इम्यून सिस्टम ही है जो हमें बुरी घटनाओं के असर से उभरने में मदद करता है। ये एक तरह का अनकॉन्शियस प्रोसेस है, पर्दे के पीछे चलता रहता है।
ये तो कमाल का आइडिया है, मतलब हमारा दिमाग खुद ही हमें हील करने की कोशिश करता है।
हाँ, वो हमें स्थिति को रीफ्रेम करने में मदद करता है। जैसे नौकरी जाने पर शायद हम सोचने लगे, अच्छा हुआ वो नौकरी वैसे भी मेरे लायक नहीं थी, या अब मुझे कुछ नया करने का मौका मिलेगा।
और हम सोचते हैं कि ये हम जानबूझकर सोच रहे हैं, पर गिल्बर्ट कहते हैं कि ये ज्यादातर ऑटोमेटिक होता है।
हाँ, ये हमारे दिमाग का डिफॉल्ट रिस्पॉन्स सिस्टम जैसा है, खासकर जब कुछ बुरा होता है। और क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, अनकॉन्शियस है, हमें अंदाजा ही नहीं होता कि ये कितना पावरफुल है। इसीलिए हम अपनी रिजिलियंस, अपनी उबरने की क्षमता को कम आंकते हैं।
गिल्बर्ट एक और दिलचस्प बात कहते हैं इसके बारे में,
क्या?
कि ये इम्यून सिस्टम बड़ी सीरियस मुश्किलों से निपटने में ज्यादा अच्छा काम करता है, बजाय रोजमर्रा की छोटी मोटी चिढ़ या परेशानियों के।
अच्छा, ऐसा क्यों?
शायद इसलिए कि बड़ी घटनाएं हमारे इस डिफेंस मैकेनिज्म को पूरी तरह एक्टिवेट कर देती हैं, जबकि छोटी मोटी बातें वो बस हमें परेशान करती रहती हैं, और इम्यून सिस्टम शायद उन्हें उतना बड़ा खतरा नहीं मानता कि पूरी ताकत से काम करे।
ये तो सोचने वाली बात है, और यहीं से वो सिंथेटिक हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट आता है ना?
हाँ, ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। सिंथेटिक हैप्पीनेस यानी संश्लेषित या बनाई गई खुशी।
मतलब
गिल्बर्ट कहते हैं कि जब हमें वो चीज नहीं मिलती जो हम चाहते थे, और फिर हम अपने हालात से समझौता कर लेते हैं या उसमें कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं और खुश महसूस करते हैं, तो ये जो खुशी है सिंथेटिक, ये उतनी ही असली, उतनी ही टिकाऊ और उतनी ही वजनदार होती है जितनी की वो खुशी नेचुरल जो हमें अपनी मनचाही चीज मिलने पर मिलती।
वाह, ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। हम तो हमेशा सोचते हैं कि असली खुशी तभी मिलती है जब सब कुछ परफेक्ट हो, जैसा हमने चाहा था।
हाँ, हम सोचते हैं कि अगर हमें मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला या प्रमोशन नहीं मिला तो हम कभी सच में खुश नहीं हो सकते।
पर गिलबुर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हमारा दिमाग खुशी बना भी सकता है और वो बनाई हुई खुशी नकली नहीं होती।
तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारा दिमाग इतना कुछ कर सकता है, तो क्या हम अपनी पिछली गलतियों से सीखते हैं? क्या बुरे अनुभव हमें भविष्य में बेहतर अंदाजा लगाने में मदद करते हैं?
इसका जवाब थोड़ा निराशाजनक है। गिलबर्ट कहते हैं ज्यादातर नहीं।
अरे क्यों भाई, सीखना तो चाहिए ना अनुभव से।
सीखना चाहिए पर हम सीख नहीं पाते, और इसका कारण है हमारी यादें, हमारी मेमोरी भी भरोसेमंद नहीं है।
मेमोरी भरोसेमंद नहीं है मतलब?
मतलब हम अनुभवों को वैसे याद नहीं रखते जैसे वो हुए थे। हम अक्सर किसी अनुभव के सबसे इंटेंस पल को याद रखते हैं, चाहे वो बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा, और उसके आखिरी पल को। इसे पीक एंड रूल कहते हैं।
पीक एंड रूल।
हाँ, तो मान लीजिए आपने कोई छुट्टी मनाई, वो ज्यादातर ठीक ठाक थी, पर बीच में एक दिन बहुत शानदार गुजरा, पीक, और अंत में एयरपोर्ट पर बहुत परेशानी हुई, एंड। तो हो सकता है आप उस छुट्टी को उतना अच्छा याद न रखें, भले ही ज्यादातर समय अच्छा बीता हो।
अच्छा, तो हमारी यादें भी हमें सही सबक सीखने से रोकती हैं।
हाँ, क्योंकि वो अनुभव का पूरा और सही चित्र नहीं देती, तो फिर उनसे सीखकर भविष्य का अंदाजा कैसे सही होगा?
तो अगर हमारी कल्पना अविश्वसनीय है, हमारी यादें अविश्वसनीय हैं, तो फिर कोई रास्ता है? भविष्य के बारे में सोचने का कोई बेहतर तरीका?
हाँ, गिलबर्ट एक प्रैक्टिकल समाधान सुझाते हैं। वो थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में, पर लॉजिकल है।
क्या है वो?
उसे वो कहते हैं सरोगेशन।
सरोगेशन?
हाँ, इसका सीधा सा मतलब है, अगर तुम जानना चाहते हो कि भविष्य में कोई अनुभव तुम्हें कैसा महसूस कराएगा, तो अपनी कल्पना पर भरोसा करने के बजाय किसी ऐसे इंसान से पूछो जो उस अनुभव को अभी जी रहा है।
मतलब जैसे अगर मैं सोच रहा हूँ कि पेरेंट बनने पर कैसा लगेगा?
तो किसी नए पेरेंट से बात करो, उनसे पूछो कि उनका दिन कैसा बीतता है, उन्हें कैसा महसूस होता है, बजाय इसके कि आप सिर्फ कल्पना करें कि बच्चा कितना प्यारा होगा।
लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम क्यों दूसरों से पूछने के बजाय अपनी कल्पना पर ज्यादा भरोसा करते हैं?
क्योंकि हम सबको लगता है कि हम बहुत स्पेशल हैं, हम यूनिक हैं। इसे गिलबर्ट विशिष्टता का भ्रम या इल्यूजन ऑफ यूनिकनेस कहते हैं।
हाँ, ये तो है। लगता है कि मेरी भावनाएं, मेरे हालात सबसे अलग हैं। दूसरे का अनुभव मुझ पर कैसे लागू होगा?
बिल्कुल, हमें लगता है कि हाँ, उसको ऐसा लगा होगा, पर मुझे तो अलग ही महसूस होगा।
लेकिन रिसर्च क्या कहती है?
रिसर्च लगातार ये दिखाती है कि औसतन किसी दूसरे व्यक्ति का वास्तविक अनुभव हमारी अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा सटीक भविष्यवाणी करता है कि हमें कैसा महसूस होगा।
ये तो कमाल की बात है। मतलब दूसरों से पूछना ज्यादा भरोसेमंद है।
हाँ, क्योंकि उनके अनुभव में वो सारे बायस, वो कल्पना की उड़ाने नहीं होती जो हमारे अपने दिमाग में चलती हैं, वो वास्तविक होता है।
तो इस पूरी किताब से अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो, की थीम्स, तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे बड़ी थीम है हमारी कल्पना की सीमाएं। जो टूल हम भविष्य देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो परफेक्ट नहीं है, उसमें खामियां हैं।
हाँ, वो डिटेल्स छोड़ती है, गलत डिटेल्स भरती है और वर्तमान से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। ये जानना जरूरी है।
दूसरी बड़ी थीम है वो प्रेजेंटिज्म। आज का मूड, आज की हालत कल के बारे में हमारी सोच को रंग देती है और हमें इसका पता भी नहीं चलता।
तीसरा, वो मनोवैज्ञानिक इम्यून सिस्टम और हमारी अनुकूलन की अद्भुत क्षमता। हम जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा लचीले हैं। हम अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियों के आदि हो जाते हैं।
हाँ, और ये जानना कि हम मुश्किलों से उभर सकते हैं, ये अपने आप में एक ताकत देता है। चौथी थीम है वो विशिष्टता का भ्रम। ये सोचना कि मैं अलग हूँ हमें दूसरों के अनुभवों से सीखने से रोकता है,
जबकि शायद वही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है बेहतर फैसले लेने का।
और पांचवी, वो सिंथेटिक हैप्पीनेस का आइडिया कि खुशी सिर्फ मिलती नहीं, बनाई भी जा सकती है, और वो बनाई हुई खुशी भी उतनी ही सच्ची होती है।
किताब में कुछ कोट्स या विचार ऐसे हैं जो दिमाग में रह जाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि इंसान अकेला जानवर है जो भविष्य के बारे में सोचता है, पर हम इसमें उतने अच्छे नहीं जितना हमें लगता है।
हाँ, ये हमारी यूनिकनेस और हमारी लिमिटेशन दोनों को एक साथ दिखाता है।
एक और बात जो मुझे बहुत छू गई थी, उसका सार कुछ ऐसा था कि हम अपने भविष्य के स्व, फ्यूचर सेल्फ, के लिए दिन रात मेहनत करते हैं जैसे माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं।
हाँ,
पर अक्सर हम उसे वो खुशी नहीं दे पाते जिसका हमने इरादा किया था। कितनी सच और थोड़ी दुखद बात है ये।
बिल्कुल, और वो सिंथेटिक और नेचुरल खुशी वाली बात भी, कि जो खुशी हम तब बनाते हैं जब हमें मनचाहा नहीं मिलता, वो भी उतनी ही रियल होती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम की पावर दिखाता है।
और आखिर में, वो सलाह के दूसरों के अनुभव से सीखना इंसान होने का एक बहुत बड़ा फायदा है।
पर सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम ऐसा करते बहुत कम है।
हाँ, ये सीधे सीधे सरोगेशन के महत्व को रेखांकित करता है।
अच्छा, तो ये सब ज्ञान की बातें हो गई, पर इनका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? मतलब प्रैक्टिकली क्या करें?
देखिए, कई चीजें हैं। जैसे अगर कोई बड़ा करियर चेंज सोच रहे हैं तो सिर्फ ऑनलाइन पढ़कर या कल्पना करके नहीं, बल्कि उस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करें।
उनसे पूछें कि उनका एक टिपिकल दिन कैसा होता है, क्या चीज अच्छी लगती है क्या नहीं, ईमानदारी से।
या फिर पैसे खर्च करने की बात। ये किताब बताती है कि चीजें खरीदने से मिलने वाली खुशी, जैसे नया फोन, गाड़ी, अक्सर जल्दी ढल जाती है।
तो शायद अनुभवों पर खर्च करना बेहतर हो, जैसे घूमना, कोई नई स्किल सीखना, दोस्तों या परिवार के साथ वक्त बिताना। इनसे मिलने वाली संतुष्टि शायद ज्यादा टिके।
रिश्तों में भी ये समझना कि हम छोटी मोटी चीजों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम मदद करता है, तो शायद हमें पार्टनर चुनते समय बाहरी चमक धमक के बजाय आपसी समझ और कंपैटिबिलिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
हाँ, और लाइफ की प्लानिंग करते समय थोड़ा लचीलापन रखना, ये मानकर चलना कि आज जो चीजें खुशी देंगी लग रहा है, जरूरी नहीं कि 5 साल बाद भी वही प्राथमिकताएं हों।
बिल्कुल। और जब कभी निराशा हो, कोई सेटबैक लगे, तो ये याद रखना कि हम में उभरने की क्षमता है, शायद ये उस मुश्किल वक्त में थोड़ी हिम्मत दे।
और एक छोटी सी टिप, जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत खुश, बहुत दुखी, बहुत गुस्से में, तब बड़े फैसले लेने से बचें, थोड़ा रुकें, शांत हों, प्रेजेंटिज्म का असर कम होगा।
एक और पॉइंट था किताब में कि कभी कभी किसी चीज के प्रति कमिटेड हो जाना, मतलब पक्का इरादा कर लेना, वो खुशी बढ़ा सकता है।
अच्छा, कैसे?
क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प खुले होते हैं या हम आसानी से अपना फैसला बदल सकते हैं, तो हमारा वो साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। वो हमें मौजूदा स्थिति को अच्छा बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करता। कमिटमेंट उसे काम करने का सिग्नल देता है।
ये भी एक अलग नजरिया है।
तो इस पूरी चर्चा से आखिरी कुछ बातें जो श्रोताओं के लिए हम समेट सकते हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानना कि मैं भविष्य की खुशी का सही अंदाजा लगाने में कच्चा हूँ, ये कोई मेरी नाकामी नहीं।
हाँ, ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन चीज है। ये जानने से थोड़ा बोझ कम होता है।
और मेरे लिए दूसरी बड़ी बात है वो रेजिलेंस वाली, कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। खुशी उतनी नाजुक चीज नहीं है जितना हम मानते हैं।
और मेरे लिए वो दूसरों के अनुभव से सीखने वाली बात, सरोगेशन, ये हमें थोड़ा विनम्र बनाता है और शायद ज्यादा समझदार फैसले लेने में मदद कर सकता है, अगर हम अपना मैं सबसे अलग हूं वाला भाव थोड़ा कम कर सकें।
हाँ, और शायद अंत में सोचने के लिए ख्याल ये है कि अगर हम भविष्य की खुशी का इतना गलत अंदाज़ा लगाते हैं, तो क्या हमें अपनी ऊर्जा भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश से हटाकर वर्तमान को ज़्यादा ध्यान से, ज़्यादा सार्थक रूप से जीने पर लगानी चाहिए?
बिल्कुल। शायद खुशी कहीं आगे इंतज़ार नहीं कर रही, बल्कि यहीं है, इस पल में, अगर हम उसे पहचान सकें।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।